शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की यत्र यत्र जहां जहां द्विजः ब्राह्मण गण गावः सुरक्षित गायें वेदः वैदिक संस्कृति वर्णाश्रमा चार वर्णों तथा चार आश्रमों वाली आर्य सभ्यता के क्रियाः कार्यकलाप तम तम उनको जनपदम नगर या शहरों में याता जाओ संदीपया अग्नि लगा दो वृश्चता काट डालो। अनुवाद कृपया हमारे पीछे दोहराइएगा। जहां कहीं भी गांव तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है तथा जहां जहां वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है वहां वहां तुरंत जाओ तुम लोग उन स्थानों में अग्नि लगा दो और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काट कर गिरा दो। तात्पर्य कृपया सुनिएगा। यहां पर असली मानव सभ्यता के चित्र का अप्रत्यक्ष वर्णन हुआ है। पूर्ण मानव सभ्यता में भली भांति प्रशिक्षित पुरुषों का वर्ग पूर्ण ब्राह्मण के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों के आदेशानुसार सुचारू रूप से देश का शासन चलाने के लिए क्षत्रिय होना चाहिए और होने चाहिए वैश्य या गायों की रक्षा कर सकें। गावह शब्द सूचित करता है कि गायों को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि वैदिक सभ्यता समाप्त हो गई है अतएव गायें सुरक्षित नहीं हैं, अपितु कसाई घरों में अंधाधुंध काटी जा रही हैं। ऐसे कार्य असुरों के हैं अतएव यह आसुरी सभ्यता है। यहाँ पर वर्णित वर्णाश्रम मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य है। जब तक मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ना हो, ठीक से शासन करने के लिए क्षत्रिय ना हो तथा अन्न उत्पन्न करने एवं गायों की रक्षा के लिए पूर्ण वैश्य ना हो, तब तक लोग शांतिपूर्वक कैसे रह सकते हैं? यह असंभव है। दूसरी बात यह है कि वृक्षों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वृक्ष को उसके जीवन काल में किसी औद्योगिक कार्य के लिए नहीं काटा जाना चाहिए। कलयुग में वृक्षों को उद्योग के लिए, विशेष रूप से कागज मिलों के लिए आँख मूंद कर व्यर्थ ही काटा जा रहा है और यह मिले बृहद मात्रा में कागज तैयार करती है, जिससे आसुरी विज्ञापन, व्यर्थ साहित्य, अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तथा अन्य कागजी उत्पाद बनते हैं। यह आसुरी सभ्यता का चिन्ह है। जब तक भगवान विष्णु की सेवा के लिए आवश्यकता ना पड़े, वृक्ष ना काटे जाएं। यज्ञ अर्थात कर्मणों अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप कर्म किया जाए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांधने वाला है। लेकिन यदि कागज की मिले कागज को उत्पन्न बंद कर दें, तो यह पूछा जा सकता है कि हमारा इस्कॉन साहित्य किस तरह छपेगा। इसका उत्तर यह है कि कागज मिलों को चाहिए कि इस्कॉन साहित्य के प्रकाशनार्थ ही कागज का उत्पादन करें, क्योंकि यह साहित्य भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह साहित्य भगवान विष्णु के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट करता है, अतएव इस्कॉन साहित्य का प्रकाशन यज्ञ संपादन है। यज्ञ अर्थात कर्मणों अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, यज्ञ तो श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा बताई गई विधि से संपन्न किया जाए। अवांछित साहित्य के प्रकाशन हेतु कागज निर्माण के लिए ही वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप कर्म है। हरे कृष्णा। तो कथा प्रसंग यह चल रहा है कि असुराज हिरण्यकश्यपु जो उनके भ्राता हैं हिरण्याक्ष उनका वध कर दिया गया है। किनके द्वारा? भगवान वराह के द्वारा। और जब उनका वध होता है तो हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित होता है और क्रोध होने के कारण अब वो कुछ साजिश रचता है। साजिश ये है कि किस प्रकार से वो देवी देवताओं को मुख्य रूप से ख़त्म कर सके। और देवी देवताओं को ख़त्म करने के लिए वो चाहता है कि विष्णु को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर विष्णु ख़त्म हो जाएंगे तो देवी देवता अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, और अगर पृथ्वी लोक से ब्राह्मण और गाय ख़त्म हो जाएंगी तो भी देवी देवता कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो हिरण्यकश्यप यही कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी गाय और ब्राह्मणों की सुरक्षा होती है उस स्थान पर जाओ, और जहाँ पर भी वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है उस स्थान पर जाओ और उस स्थान को जला दो और उन लोगों की हत्या कर दो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जो एक सभ्य एक जो वैदिक समाज होता है उसका एक विपरीत वर्जन है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है। क्योंकि एक सभ्य जो वैदिक समाज होता है उसमें क्या किया जाता है, गायों की रक्षा की जाती है, ब्राह्मणों की रक्षा की जाती है, और जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म है उसकी रक्षा की जाती है, उसके नियमों का पालन किया जाता है। तो इसी कारण से, क्योंकि आजकल कलयुग में यही बढ़ता जा रहा है और कलयुग में जितने भी लोग हैं आसुरिक ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनका जितना भी कार्य है असुरों की तरह है, या तो वो असुर हैं या फिर वो असुर बनना चाहते हैं या असुर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर लक्ष्य सिर्फ असुर बनना है उनका, और सारे कार्य, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य वही चुना है तो सारे कार्य उसी तरफ उनके चल रहे हैं असुर बनने के लिए। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जितने भी खेत हैं, विलेजेस हैं, सब खत्म हो गए हैं, जितने भी शहर हैं सब नर्क बनते जा रहे हैं या नर्क बन गए हैं, जितने भी पहाड़ हैं वो तोड़े जा रहे हैं, नदियां सूख गई हैं। तो व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है, इतना कुछ हो गया है, मैं जंगल में जाके रह लेता हूँ, पर जंगल में भी नहीं रह सकते क्योंकि जंगल भी काटे जा रहे हैं। तो अगर किसी को वैदिक शास्त्रों के अनुसार अगर उसको अपना जीवन चलाना है, जीवन निर्वाह करना है, तो उसके रहने की और भक्ति करने का कोई स्थान नहीं है। तो इन सब का जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, जो समस्या की जड़ है, वो इसमें बताई गई है कि अगर जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग ये करते हैं, और अगर हम इस आसुरी प्रवृत्ति को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भक्त लोग ज़्यादा बढ़े, असुरों का नाश हो, तो उसका करने का ये तरीका इसमें बताया गया है कि हम क्या करें। तीन चीज़ें, गायों की रक्षा, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसको बचाएं, और जो वर्णाश्रम धर्म है उसको स्थापित करें। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि किस प्रकार हम लोग, क्योंकि गायों की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा ये स्तंभ है। अगर देश को ठीक से चलाना है तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए जब हम कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान भी ये दो कार्य करते हैं मुख्य रूप से, ब्राह्मणों की रक्षा और गायों की रक्षा, उसके बाद जगत हिताय, जगत का हित उसके बाद आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मनुष्य समाज को और एक आसुर जानवर के समाज को बांटने के लिए ये जो वर्णाश्रम धर्म है यही सिर्फ दोनों को बाइफरकेट कर रहा है कि कौन असुर है, कौन जानवर है और कौन मनुष्य है। क्योंकि तो जानवर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एनिमल प्रोपेंसिटी जिनके अंदर होती है, वो क्या होते हैं, सेल्फिश, बहुत मतलबी होते हैं, और क्या है उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, इंद्र तृप्ति। हर चीज का, हर कार्य का एक लक्ष्य होता है, वो है इंद्र तृप्ति। तो वैदिक वर्णाश्रम धर्म में ऐसा नहीं होता था। जैसे जो वैदिक वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, आजकल तो हम लोग जब ब्राह्मण का नाम सुनते हैं तो लोग उनको चिढ़ाते हैं पंडित जी कह के, पर पहले के समाज में ऐसा नहीं होता था। पहले ब्राह्मणों को कोई ऐसे चिढ़ा नहीं सकता था, आजकल तो उनका मजाक उड़ाया जाता है ना, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए शर्मिंदा वाली बात है, मतलब ना आप पूरी दुनिया उसको, जिसने चोटी रख ली वो तो खत्म हो गया, मतलब उसको समाज में रहने नहीं देंगे। पर पहले ऐसा नहीं होता था। एक बार यदुवंशियों ने ट्राई की थी, सांब इत्यादि ने, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने के लिए, कि उन्होंने अपने पेट में एक गदा बांध कर स्त्री का रूप लेके आए थे और ऋषियों से पूछ रहे थे कि बताओ मेरी बहन है ये जो गर्भवती है, इसके पेट में पुरुष लड़का है या लड़की है। तो ऋषियों इतनी शक्तिशाली होते थे कि उन्होंने श्राप दे दिया कि इसमें से जो निकलेगा वो तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। तो ये ब्राह्मणों की शक्ति होती थी, ब्राह्मण कमजोर नहीं होते थे। हालांकि ब्राह्मणों में बहुत गुण थे, क्वालिटीज होती थी और होती हैं अभी भी जो ब्राह्मण हैं। सर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बताया गया है, शांति प्रिय, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये सारे ब्राह्मण के गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का सिर्फ एकमात्र, ब्राह्मण बहुत कंपैशनेट, बहुत करुणाशील होते हैं, बहुत करुणामयी होते हैं। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि जिस भी स्थान पर जाते थे भगवान के नाम का प्रचार करते थे, भगवान के यश का गुणगान करते थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कृष्ण भावना में होना और बाकी लोगों को कृष्ण भावना में बनाना, ये उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। दरअसल ये जो वर्ण है ये बाद में बने हैं। सबसे पहले महाभारत में भृगु मुनि बता रहे हैं कि सबसे पहले केवल एक वर्ण होता था, क्योंकि ब्रह्मा जी से सभी लोग निकले थे इसलिए पहले एक ही वर्ण होता था, वो होता था ब्राह्मण। और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज के अनुसार महाभारत में बताया गया कि किस प्रकार सारे आश्रम बनने शुरू हुए, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो सबसे पहले केवल एक ही वर्ण हुआ करता था, ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण इस समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण में जैसे क्षत्रियों के लिए बताया जाता है वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये क्षत्रियों के गुण थे और ये गुण हमें आजकल क्षत्रियों में देखने के लिए नहीं मिलते। आजकल अगर युद्ध होता है तो जो क्षत्रिय है, जो राजा है, वो कहीं छुप कर बैठा होता है अपने कमरे में और उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड और उसका रूम और उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया था कि उसको कुछ ना हो, वो सेफ रहे। पर पहले क्षत्रिय ऐसा नहीं होते थे, पहले क्षत्रिय सबसे आगे रहते थे और लड़ते थे, युद्ध करते थे स्वयं। और जो क्षत्रिय होते थे बहुत चैरिटेबल होते थे, बहुत दान दक्षिणा देते थे, ऐसा नहीं कि कंजूस होते थे। आजकल क्षत्रिय क्या करते हैं, आजकल के जो समाज में जो नेता हैं वो अपने लिए चीजें इकट्ठी करते हैं, अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बच्चों को सेटल करना। पर पहले के क्षत्रियों का, पहले के क्षत्रिय पूरे समाज को अपने परिवार की तरह देखते थे। और जो वो टैक्सेस भी लेते थे, सबसे कर वसूल करते थे, वो कर को इस्तेमाल करते थे उनकी सेवा करने के लिए बाद में। और क्षत्रियों का सबसे बड़ा जो इसमें बताया गया, जैसे युद्ध में धैर्य, और जो क्षत्रिय थे बहुत वीर होते थे। अगर क्षत्रियों को युद्ध के लिए कोई ललकारे तो कभी ना नहीं कहते थे। जैसे हम देख सकते हैं पांडवों को कौरवों ने चैलेंज किया गैम्बलिंग मैच के लिए, क्या कहते हैं, पासा, द्रुत क्रीड़ा के लिए उनको निमंत्रित किया, तो पांडवों ने उसे ना नहीं बोला क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो मना नहीं कर सकते। हालांकि पांडव भी जानते थे कि इसमें कोई चाल हो सकती है, परंतु फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। और हम देख सकते हैं जैसे जरासंध, जब जरासंध के पास कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों जब युद्ध करने के लिए गए तो तीनों ब्राह्मण के रूप में गए, और जरासंध मूर्ख नहीं था क्योंकि क्षत्रिय था, क्षत्रिय मूर्ख नहीं होते। तो उन्होंने उनके बॉडीली फिगर को देखकर, स्ट्रक्चर को देखकर बता दिया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है निश्चित रूप से। परंतु फिर भी क्योंकि वो कुछ मांगने के लिए आए थे और उन्होंने युद्ध के लिए, युद्ध की डिमांड की, तो जरासंध ने उन्हें मना नहीं किया। तो ये क्षत्रिय स्पिरिट होता था, क्षत्रिय इस प्रकार से वर्क करते थे अपना। और क्षत्रियों का जो मुख्य लक्ष्य यही रहता था कि जितने भी उनके सिटीजन्स हैं, जितने भी उनके देश में, समाज में रहने वाले लोग हैं, उनकी रक्षा करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करें। केवल ह्यूमन बींग्स नहीं, मनुष्य नहीं, आजकल तो अगर मान लीजिए रक्षा की भी जा रही तो किसकी, मनुष्यों की, बाकी जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, इनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। बताया था राम राज्य में भगवान राम के महल के बाहर एक घंटी होती थी, अगर किसी की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, रामायण में बताया गया है, तो वो उस बेल को रिंग करता था कि मेरी समस्या है, तो भगवान राम स्वयं उसको डील करते थे कि क्या आपकी समस्या है, उसको सॉल्व करते थे। और बताया गया कि भगवान राम के शासन में वो बेल कभी बजी नहीं, केवल एक बार बजी थी और लगातार बजती जा रही थी, टन टन टन। भगवान ने लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण जाओ देख के आओ क्या हो रहा है, कौन है, क्या किसकी समस्या है, उसको अंदर लेके आओ। तो लक्ष्मण बाहर जाते हैं, देखते हैं कोई नहीं है वहां पर, दोबारा अंदर आते हैं तो दोबारा घंटी के बजने की आवाज आती है, भगवान राम दोबारा भेजते हैं कि जाओ देख के आओ कौन है बाहर। तो दोबारा बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, कुत्ता है और वो घंटी कुत्ता बजा रहा था। अब ये मत पूछना कैसे बजा रहा था। तो वो घंटी कुत्ता बजा रहा था और उस कुत्ते के सर से खून निकल रहा था। तो उस कुत्ते ने पूछा, मतलब लक्ष्मण ने पूछा उस कुत्ते से कि बताओ क्या समस्या है। तो वो कुत्ता कहता है आपको क्यों बताऊं, मैं तो भगवान राम से मिलने के लिए आया हूं, मेरी जो समस्या है मैं उन्हें बताऊंगा। तो भगवान राम ने बोला अच्छा ठीक है भाई अंदर आ जाओ, भगवान राम को बता दो। वो कहता है मैं तो कुत्ता हूं, मैं महल में कैसे प्रवेश कर सकता हूं, अगर आप चाहते हो मैं महल में प्रवेश करूं तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करो मेरे लिए। तो लक्ष्मण को समझ नहीं आता ये क्या है, मतलब ये क्या बोल रहा है ये। तो लक्ष्मण अंदर जाते हैं और भगवान राम को पूरा बताते हैं। तो भगवान राम सुनते हैं और भगवान राम समझ आते हैं कि कोई साधारण कुत्ता नहीं है। तो भगवान राम उसके लिए एक आसन लगवाते हैं और स्वागत के साथ उस कुत्ते को बुलाते हैं, उस पर बिठाते हैं और फिर राम उससे पूछते हैं कि बताओ क्या समस्या है। अब देखिए ये क्षत्रिय धर्म है, ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य की प्रॉब्लम, आजकल तो मनुष्य की कोई प्रॉब्लम सुनता ही नहीं है, जानवर की प्रॉब्लम सुनने की तो बहुत दूर की बात है यहाँ पर। तो भगवान राम ने उस कुत्ते को एक आसन में बिठाया और उससे पूछा कि बताओ आपकी क्या समस्याएं हैं। तो उस कुत्ते ने बताया कि जो ब्राह्मण है मेरे गांव में रहता है उसने मुझे मारा है और मेरे सिर से खून निकल रहा है। तो भगवान राम कहते हैं ठीक है उस ब्राह्मण को बुलाया जाए। तो उस ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो ब्राह्मण आता है वहां पर, ब्राह्मण से पूछते हैं भाई आपने इसे क्यों मारा। तो ब्राह्मण कहता है देखो जी मैंने एकादशी का व्रत रखा था भगवान, और मैंने व्रत रखा था और मैं भूखा था, मैंने कुछ नहीं खाया था, और मैं जहां भी जा रहा था नहाने के लिए मेरे आगे पीछे घूम रहा था, और जैसे ही मैं अपने घर में गया मैंने प्लेट प्लेट लगा के रखी अपने खाने की, और मैं जैसे ही अंदर गया तो ये कुत्ता अंदर घुसा और इसने मेरा खाना खा लिया। अब मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इसको लाठी से मारना शुरू कर दिया। तो कुत्ते से पूछा कि क्या ये बात ठीक है। तो कुत्ते ने कहा कि हाँ बात ठीक है, पर आप कुत्ते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कुत्ता तो डिपेंडेंट ही होता है वहां पर। तो क्या मैंने कोई गलती की, गलती इसकी थी, अगर ये अंदर गया था तो दरवाजा बंद करके जाता, दरवाजा क्यों खोल के गया, दरवाजा बंद करके जाता तो मैं नहीं खाता, इसने पूरा मौका दिया मैं अंदर आया और मैंने खा लिया। और कुत्ते ने बोला कि देखो फिर भी मैं तो कुत्ता हूं, अगर मैंने गलत काम किया तो समझ आया ये तो ब्राह्मण है, इसको गलत काम तो नहीं करना चाहिए था, इसने क्यों ऐसा क्रोधित हुआ, तो इसको सजा मिलनी चाहिए, कुत्ते ने बोला। तो भगवान राम ने भी बोला हाँ इसको सजा मिलनी चाहिए। अब भगवान क्या करें, भगवान ने सबसे पूछा अपने मंत्रियों से जो भी वहां पर उनके ब्राह्मण वगैरह इत्यादि थे कि बताइए इनको क्या सजा देनी चाहिए। तो सभी ब्राह्मण और मंत्री बोलते हैं देखिए हमने कभी सुना तो नहीं है किसी ब्राह्मण को सजा देनी चाहिए, आप ही राजा हैं आप ही देख लीजिए क्या करना है। अब भगवान राम फंस गए, अब क्या करें। तो भगवान राम ने कुत्ते को बोला कि तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम क्या सजा इसे दी जाए। तो कुत्ता बोलता है कि हमारे अयोध्या में जो सबसे बड़ा मठ है ये, उस मठ का इसको मठाधीश बना दिया जाए। किसी को समझ नहीं आता ये कैसी सजा है वहां पर ठीक है उसने ये सजा मांगी तो बना दिया गया उसे, और पूरा वो केस खत्म हुआ और सब चले गए। बाद में ब्राह्मणों ने और मंत्रियों ने कुत्ते से आके पूछा कि आप तो इसको सजा देने चाहते थे, आपने इसे मठाधीश क्यों बना दिया। तो उस कुत्ते ने बोला कि देखिए अपने पिछले जन्म में इस मठ का मैं अधीश्वर था, मैंने अपने जीवन में कभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे से रहकर कोई कार्य नहीं किया, परंतु क्योंकि हम मैनेजमेंट सेवा ही ऐसी है किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई गलती हो जाती है, और उसके फल स्वरूप मुझे ये भुगतान भुगतना पड़ा है कि मुझे कुत्ते का शरीर मिला है यहाँ पर। तो जब मेरी ये दुर्गति हुई है, जब मैंने कभी क्रोध किया ही नहीं, तो इस ब्राह्मण की क्या दुर्गति होगी जो क्रोध करता है, इसलिए मैंने इसे ये मठाधीश बनाया कि इसको अपने आप सजा मिल जाएगी इसकी। तो दरअसल ये कथा का तात्पर्य यह था बताने का कि पहले जमाने में किस प्रकार से चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो उसकी प्रॉब्लम को सुना जाता था। और तीसरे ब्राह्मण क्षत्रिय तीसरे वैश्य, वैश्य के लिए बताया गया है कृषि करण गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म बताए हैं, खेती करना गायों की रक्षा करना। तो ये जो बेसिक इनका काम है, क्योंकि मनुष्य समाज के लिए गायें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसको गाय का दूध मिलेगा अगर उसकी बुद्धि स्ट्रांग होगी तभी वो कार्य को ठीक से कर पाएगा। और जो वैश्यों का दूसरा कर्तव्य है वो है खेती करना, अन्न को उपजाना और इसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आजकल के हम वैश्य समाज देखते हैं, जैसे वैश्य पहले जो खेती करने वाले होते थे उनको गर्व होता था, और आजकल के जैसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताया गया ये व्रजपुरा द रेसिडेंट्स ऑफ नंद महाराज, नंद महाराज के गांव के बारे में बताया गया कि कब, जब कृष्ण ने जन्म लिया था तब, कि जो नंद महाराज का जो घर था वॉज फुली डेकोरेटेड विद वेराइटीज ऑफ फेस्टूनस एंड फ्लैग्स, पूरी तरीके से सजाया गया था झंडों से, एंड इन डिफरेंट प्लेसेस गेट्स वर मेड विद वेराइटीज ऑफ फ्लावर गार्लैंड्स पीसेस ऑफ क्लोथ एंड मैंगो लीव्स, और अलग अलग द्वार बनाए गए थे फूलों से, फूलों के हार से, कपड़ों से और आम की पत्तियों से, द कोर्टयार्ड्स द गेट्स विद द रोड्स एंड एवरीथिंग विद इन द रूम्स ऑफ हाउसेस वर परफेक्टली स्वेप्ट एंड वॉश्ड विद वाटर, और अच्छी तरीके से सब कुछ साफ किया गया था, धुला हुआ था, द काउस द बुल्स एंड द काव्स वर थॉरली स्मीयर्ड विद अ मिक्सचर, तो जो गायें थी, बैल थे और बछड़े थे उनको बहुत अच्छी तरीके से हल्दी का लगाया गया था, और तेल की मालिश की गई थी, और बहुत सारे मिनरल्स से उनकी मालिश की गई थी, दियर हेड्स वर बिडेक्ट विद पीकॉक फैदर, और हर गाय के सिर पे, बैल के सिर पे एक मोरपंख लगाया गया था, एंड दे वर गार्लेंडेड एंड कवर्ड विद क्लोथ एंड गोल्डन ऑर्नामेंट्स, और उनको एक हार पहनाया गया था और सोने के हार पहनाए गए थे साथ में। देखिए ये एक खेत गांव में रहने वाले की वो है, गांव में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि आजकल के जो वैश्य हैं, आजकल जो किसान हैं, उनको लगता है कि बहुत निकृष्ट काम कर रहे हैं, वो फटी धोती पहनते हैं, खाने के लिए पैसा नहीं होता, क्योंकि जो उनका मुख्य कार्य है गायों की रक्षा करना और खेती करना वो नहीं कर रहे वो, इसलिए क्या कर रहे हैं वो अलग अलग जगह भाग रहे हैं अब। तो जो गायें हैं और बैल हैं उनको ये सोने के हार पहनाए गए थे। ओ किंग परीक्षित द काउ हर्ड मेन ड्रेस्ड वेरी ऑपलेंटली विद वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स, और जो ग्वाल बाल थे वहां पर उनको बहुत अच्छे गहने और कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, डेकोरेटेड इन दिस वे एंड कैरिंग वेरियस प्रेजेंटेशन इन देयर हैंड्स दे अप्रोच द हाउस ऑफ नंद महाराज, और इस प्रकार से सजे हुए और अपने हाथ में बहुत सारे तोहफे लेके वो नंद महाराज के घर में गए। तो ये वैश्य होते थे जिनका मुख्य कार्य होता था गायों की रक्षा करना और खेती करना, और आजकल वैश्य ये कार्य नहीं कर रहे, तो सारा सिस्टम उल्टा चल रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण के कार्य नहीं कर रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय के कार्य नहीं कर रहे, वैश्य वैश्य के कार्य नहीं कर रहे। और बताया गया है वैश्य धर्म में महाराज युधिष्ठिर के समय में गायें इतनी खुश होती थी क्योंकि उनकी सेवा इतनी अच्छी होती थी, और उनके जो थन होते थे वो दूध से भरे होते थे, और वो पूरी जमीन को अपने दूध से गीला कर देती थी, इतना गायें खुश होती थी, इतनी अच्छी सेवा होती थी उनकी। और जो वैश्य थे हमेशा ब्राह्मणों को असिस्ट करते थे, उनकी सेवा करते थे, और कभी भी लालची नहीं होते थे, लोभी नहीं होते थे। आजकल क्या है, सभी पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, धन, और धन भी कैसा, जो धन धन ही नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में जो धन होता था वो सोने के सिक्के होते थे, गायें होती थी, खेती होती थी, और थोड़ा समय बदला तो वो चांदी के सिक्के हो गए, थोड़ा और समय बदला लोहे के सिक्के हो गए, थोड़ा और समय बदला पेपर नोट्स हो गए, और समय बदला प्लास्टिक चेक्स हो गए, और अब क्या है, पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ आप जाइए और आपके एटीएम अकाउंट पे लिखा है कि आपके बैंक में इतने इतने लाख इतने इतने करोड़ रुपए हैं, बस मनी एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। तो दरअसल जो असली धन है जैसे गायें और खेती करना ये सब चीज नहीं है उनके लिए। और चौथे शूद्र, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं शूद्र कौन होते हैं, बता रहे हैं सर्विस विदाउट डुप्लिसिटी टू द ब्राह्मणास, कि जो शूद्र होते हैं बिना किसी दोगलेपन के ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, काउस गायों की सेवा करते हैं, देवी देवताओं की सेवा करते हैं, और भी जो वर्शिपेबल पर्सनालिटीज हैं उनकी सेवा करते हैं, एंड कंप्लीट सेटिस्फेक्शन विद व्हाटएवर इनकम इज ऑब्टेन्ड इन सच सर्विस, और पूरी तरीके से संतुष्ट रहते हैं जो भी उनको मिल जाए उस सेवा करने में, आर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ शूद्रास, तो ये शूद्र की नेचुरल क्वालिटीज हैं, तो ये स्वाभाविक गुण हैं शूद्र के। तो आजकल अगर हम देखें तो पूरा समाज बदलता जा रहा है, क्योंकि जो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बता रहे हैं, आश्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करे, तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं आजकल अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे, और विशेष रूप से ब्राह्मण, क्योंकि मुख्यतः ब्राह्मण की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाए और लोगों को सिखाए। जो ब्राह्मण का, क्योंकि अगर ब्राह्मण डिग्रेड है, अगर, क्योंकि देखिए ब्राह्मण कौन होते हैं, हेड, सिर, अगर सिर ही खाली हो, किसके अंदर दिमाग ना हो, तो बाकी शरीर, बाकी अंग कैसे काम कर सकते हैं, हाथ पैर ये सब कैसे काम कर सकते हैं। तो ये दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को बहुत शार्प और इंटेलिजेंट होना चाहिए कि किस प्रकार सबको चलाए वो। तो ब्राह्मण की डिग्री, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। इसलिए भक्ति विद्यापूर्ण महाराज इसे बताते हैं कि यजन याजन को वर्शिपिंग एंड एंगेजिंग अदर इन वर्शिपिंग, कि वर्शिप करना भगवान की और बाकी सबको भी वर्शिप में लगाना, और दान प्रतिग्रह है, दान लेना और दान देना। तो इसमें से बताया गया है अगर ये ब्राह्मण छह कार्य नहीं कर सकता, एटलीस्ट तीन कार्य इसके लिए कंपलसरी है, पठन पढ़ना, वर्शिपिंग यजन और दान दान देना, ये तीन कार्य उसके लिए कंपलसरी है। वैसे तो छह के छह कंपलसरी है, पर एटलीस्ट इन तीन कार्य को अवॉइड नहीं कर सकता, अपनी पढ़ाई करना, अपनी वर्शिप करना और दान देना। और आज के समाज में ब्राह्मण ये कार्य नहीं कर रहे, और इसी कारण से जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, ब्राह्मण डिग्रेड होने के कारण सभी कुछ डिग्रेडेड होता जा रहा है। पद्म पुराण में बताया गया है इन कलियुगा कलयुग में ऑल फोर वर्णास आर डिवॉइड ऑफ कैरेक्टर एंड प्रॉपर बिहेवियर एंड आर एडिक्टेड टू सिन। जो भी चारों वर्ण हैं उनके अंदर कोई, उनका कोई चरित्र नहीं रहता, कोई उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, और हर प्रकार के बुरे कार्य में वो लगे रहते हैं। द ब्राह्मणास आर डिवॉइड ऑफ वैदिक नॉलेज एंड सेक्रीफाइस। ब्राह्मणों को किसी प्रकार का कोई वैदिक ज्ञान नहीं होता और किसी प्रकार का वो यज्ञ नहीं करते। गिविंग अप द फाइव सेक्रीफाइसेस रिकमेंडेड इन द वेदास ऑल द ब्राह्मणिकल बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस दे एंगेज इन इंफीरियर एक्टिविटीज। और हर जो पांच प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए, उसको छोड़कर, वेदों के पठन को छोड़कर, अपने ब्राह्मणिकल बिहेवियर को छोड़कर, चेतना को छोड़कर, वे इंफीरियर छोटे कामों में लगे हुए हैं ब्राह्मण। दे कलेक्ट चैरिटी टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड एपिटाइट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। और क्या कर रहे हैं जो ब्राह्मण हैं, वो धन को इकट्ठा करते हैं किस लिए, अपनी जो इंद्र तृप्ति की असीमित इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए। द ब्राह्मणास ऑफ कलियुगा आर कैरेक्टराइज बाय द क्वालिटी ऑफ लस्ट एंड क्रुएलिटी। और जो कलयुग के ब्राह्मण हैं उनको कैसे कैरेक्टर कैसे चुना जा सकता है, कितने कामी हैं वो और कितने क्रुएल हैं वो, निर्दयी। अनहोली इन डीड एंड थॉट्स दे टेक प्लेजर इन एनवी एंड मलाइज। तो क्या है, उनके जो कार्य हैं, उनके जो विचार हैं बिल्कुल दूषित हैं, और किस चीज में, दूसरों से ईर्षा द्वेष करने में वो आनंद का अनुभव करते हैं। दीज प्रोफेशनल थीव्स ब्लास्फेम द वेदास। ये जो प्रोफेशनल थीव्स हैं ये वेदों की निंदा करते हैं, ड्रिंक लिकर शराब पीते हैं एंड एक्सप्लॉइट वुमेन फॉर सेक्स, और अपने कामों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्त्रियों का शोषण करते हैं। टेकिंग ग्रेट प्लेजर इन एडल्ट्री एंड फॉर्निसेशन। ओके, तो हर प्रकार के गलत कार्य में वो अपना रुचि रखते हैं। दे एक्सेप्ट एक्सट्रीमली सिंफुल मीन्स ऑफ मेंटेनिंग देयर लाइव्स। और हर प्रकार का जो सिंफुल तरीका है अपने जीवन चलाने के लिए वो उसको अपनाते हैं। एंड पोजिंग एज स्वामीज, और क्या है, स्वामी बनते हैं। पर हम देखते हैं आजकल कितने स्वामी हैं ऐसे, कितने बाबा लोग ऐसे हैं जो हर प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं, बस दिखावा ये कर रहे हैं कि वो भक्त। तो ये पद्म पुराण में पहले ही लिखा जा चुका है कि कलयुग में ऐसे ही ब्राह्मण मिलेंगे हमें। पोजिंग एज स्वामीज, अपने आप को स्वामी दिखाते हैं, ड्रेस इन रेड क्लोथ, लाल कपड़े पहनते हैं, एंड वियर लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड, और बड़े बड़े बाल रखते हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। इन दिस वे द रेस्ट सो कॉल्ड ब्राह्मण्स ऑफ कलयुगा एक्सेप्ट द धर्म ऑफ शूद्रास। इस प्रकार से जो कलयुग के जो ब्राह्मण हैं, नाम के ब्राह्मण हैं, वो ये इतने धूर्त कार्य करते हैं शूद्रों वाले, दैट इज दे बिकम फोर्थ क्लास मैन। और ये करने से क्या होते हैं, वो चौथे श्रेणी के व्यक्ति बन जाते हैं। चैतन्य भागवत आदि लीला में कहा गया है, राक्षसः कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्रह्म कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृष्णन। दोस हुवर राक्षसास इन प्रीवियस एजेस पिछले युगों में जो राक्षस हुआ करते थे हैव टेकन बर्थ एज ब्राह्मणास इन कलयुगा। जो पिछले जन्म पिछले युगों में जो राक्षस हुआ करते थे उन्होंने इस जन्म में क्या है ब्राह्मण के भेष में वो लोग आए हैं। किस लिए आए हैं? टू टॉर्मेंट द फिजिकल वीक सेंटली पर्सन, ताकि जो भक्त लोग हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं, वो आर एंगेज इन द कल्चर ऑफ हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, जो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे हैं उनको तंग करने के लिए। हम देखते हैं कितने ब्राह्मण कितने आजकल के स्वामी हैं जो हमारी संस्था एस्कॉन के प्रति कितने नाम लगाते हैं कि इसमें ये गलत कार्य है, क्योंकि वो पिछले जन्म के पिछले युगों के राक्षस हैं। जो पिछले जन्म के जो बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे जिनके नाम इसमें बताए गए हैं, वो राक्षस इस जन्म में ब्राह्मण का भेष बना के आते हैं। और बताया गया है चैतन्य भागवत में, ऑल दीज डेमन्स आर ब्राह्मणास इन नेम ओनली। ये सारे जो ब्राह्मण हैं ये नाम के ब्राह्मण हैं। ऑल ऑफ देम विल बी फिनिश्ड बाय द एजेंट्स ऑफ द किंग ऑफ डेथ यमराज, और यमराज के द्वारा ये खत्म कर दिए जाएंगे। इन कलयुगा डेमन्स टेक बर्थ इन द हाउस ऑफ ब्राह्मणास टू हरास सेंटली पर्संस। कलयुग में जो असुर हैं ब्राह्मणों के घर में जन्म लेते हैं ताकि जो भक्त लोग हैं उसको उनको तंग करने के लिए। ऑल द धर्म शास्त्र जितने भी धर्म शास्त्र हैं फॉरबिड वन हमें मना करते हैं, किस लिए? टू टच हियर फ्रॉम और ऑफर ऑब्सेंसेस टू सच मेटेरियलिस्टिक एंड डेमोनिक ब्राह्मणास। ऐसे ब्राह्मणों को छूने के लिए, उनसे सुनने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए सारे जो वैदिक शास्त्र हैं हमें मना करते हैं। तो जो भी भक्त हैं और जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि अगर वो संस्कार चैनल साधना चैनल और ऐसे चैनल देख रहे हैं और किसी ब्राह्मण से सुन रहे हैं सो कॉल्ड ब्राह्मण से, तो वो किससे सुन रहे हैं? राक्षस से सुन रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि इनको ना छूना चाहिए ना इनसे सुनना चाहिए ना इनका संग करना चाहिए। तो अगर हम संस्कार चैनल खोलते हैं तो इसका मतलब हम लोग हिरण्यकश्यप के एसोसिएट्स बन जाते हैं उस समय। तो बहुत सावधानी से हमें, क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य जो ब्राह्मण का हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, सहज निर्मल ए ब्राह्मण हृदय कृष्णे रसित ए योग्य स्थान होए। द हर्ट ऑफ अ ब्राह्मणा इज बाय नेचर वेरी क्लीन। जो ब्राह्मण का हृदय है वो स्वभाव से बहुत शुद्ध होता है। देयरफॉर इट इज प्रॉपर प्लेस फॉर कृष्णा टू सिट। इसलिए एक प्रॉपर स्थान है, एक सही स्थान है कृष्ण के बैठने के लिए। इसलिए ब्राह्मण का हृदय शुद्ध होता है और जो भी ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि इस प्योरिटी को अपनाएं और अपने हृदय को शुद्ध करें। तो प्योरिटी के लिए बताया जाता है प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी शक्ति है। तो छह प्रकार की प्योरिटी होती है। इसमें सबसे पहली प्योरिटी होती है प्योरिटी ऑफ प्लेस, स्थान। हमने डीटी वर्शिप कोर्स में इसको बहुत एलैबोरेट में डिस्कस किया था। सबसे पहली प्योरिटी होती है प्योरिटी ऑफ प्लेस, स्थान की शुद्धि, कि जिस स्थान पर हम हैं अगर हम ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने एटमॉस्फेयर को वातावरण को हम लोग साफ सुथरा रखें। जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, जहाँ पर हम लोग वर्शिप करते हैं, जिस स्थान पर हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिस स्थान पर हम लोग सोते हैं, जिस स्थान पर हम खाते हैं, उस स्थान को शुद्ध रखें, ये प्योरिटी है। सेकेंड प्योरिटी ऑफ आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स हैं भगवान की सेवा में जो यूज होते हैं उनकी शुद्धि बनाए रखें हम लोग। तीसरा है प्योरिटी ऑफ बॉडी, इस शरीर की शुद्धि बना के रखें हम लोग। शरीर की शुद्धि बनाने के लिए चाहे जैसा मर्जी मौसम क्यों ना हो नहाएं सुबह। ये नहीं कि ठंड है तो चलो हफ्ते में एक दो बार नहा लिए, वो भी दिल किया तो नहा लिए नहीं तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं चलता है, परफ्यूम्स तो है ही ना आजकल। तो ये ब्राह्मण नहीं होते। और प्योरिटी ऑफ बॉडी में आता है तिलक लगाना, खाली ऊपर वाला तिलक नहीं पूरे 13 तिलक लगाना शरीर पे, ये प्योरिटी ऑफ बॉडी आता है। कंठी माला पहनना ये प्योरिटी ऑफ बॉडी है, इससे हम अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। शिखा रखना प्रभु जी के लिए। और चौथा और जो छह में से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्योरिटी ऑफ माइंड, अपने मन को शुद्ध रखना। कि अगर मन ही दूषित है तो हम बाकी में से किसी भी प्योरिटी, इसका मतलब किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष या किसी भी प्रकार की नेगेटिव फोर्स से अपने आप को बचा के रखना। पांचवा है प्योरिटी ऑफ मंत्रास, मंत्रों की शुद्धि। मंत्रों की शुद्धि किस प्रकार से कि अगर हम ब्राह्मण हैं और अगर हम कोई भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो ठीक से करें। अगर हम जो मंत्र बोल रहे हैं वो समझ आना चाहिए कि क्या है वो, है ना। अगर हम चैंटिंग भी करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं जो लोग, या और कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, या कुछ लोग भोग भी लगाते हैं भगवान को, कोई भी हम मंत्र पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो और क्लियर हो। और प्योरिटी ऑफ मंत्र के लिए बताया जाता है कि उस मंत्र में शक्ति होती है जो मंत्र उस मंत्र के मीनिंग को ध्यान में रखते हुए बोला जाए, तो वो प्योरिटी ऑफ मंत्रा वो है, उस मंत्र के मतलब को अपने मन में ध्यान में रखते हुए फिर हम उस मंत्र को चैंट करें। और छठा इसमें प्योरिटी ऑफ डीटी, वो जो डीटी वर्शिप करते हैं उनके लिए, ताकि जो विग्रह हैं भगवान के उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। तो ये छह प्रकार की प्योरिटी बताई गई है जिसका ब्राह्मण को पालन करना चाहिए, उसके लिए कंपलसरी ये करना पालन। तो जिस प्रकार से हम लोग बता रहे थे कि जो ब्राह्मण है वो सिर है इस सोसाइटी के, और अगर सिर ही दूषित रहेगा, अपवित्र रहेगा, अगर सिर प्योर नहीं, हेड कंटामिनेटेड है, तो जो भी चीजें हैं वो कंटामिनेटेड ही फ्लो करेगी और एक कभी भी प्रॉपर आश्रम वर्णाश्रम सिस्टम नहीं बन पाएगा। और इस वक्त समाज में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा, बल्कि आसुरी वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है। और जरूरत है कि एक प्रॉपर वर्णाश्रम धर्म का पालन हो, और जिसको लीड करने के लिए प्रॉपर ब्राह्मणिकल कल्चर हो और प्रॉपर ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग हो। और प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया, प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से हिप्पीज को, जो लोग शूद्रों से भी डिग्रेडेड थे, उनको भी प्रभुपाद जी ने प्रॉपर ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग देकर ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बना दिया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव है, ये सब चीजें पॉसिबल हैं। और स्पेसिफिकली ब्राह्मण क्वालिटीज के लिए, अगर कोई भी ब्राह्मण क्वालिटीज डेवलप करना चाहता है अपने अंदर, तो ब्राह्मण क्वालिटीज कभी भी ओवरनाइट नहीं आती। ऐसा नहीं कि हम सोएंगे और सोकर उठेंगे तो हमारे अंदर कोई ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उत्पन्न हो जाएंगी। जब हम सुबह उठेंगे तो हम अपने आप को हम्बल फील करेंगे या टॉलरेंट फील करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये ब्राह्मण क्वालिटीज हैं, जो भी ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिखे थे, इसे हमने अपने कोर्स में भी डिस्कस किया था, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स कि किस प्रकार हम लोग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को अपने लाइफ में डेवलप कर सकते हैं। तो एक बहुत फेमस राइटर है, बुक राइटर, उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने पास 13 क्वालिटीज रखी हुई हैं, जो भी डिवोटीज की क्वालिटीज होती है, जैसे हम्बल, काइंड, ये 13 क्वालिटीज उन्होंने अपने पास रखी है। और हर हफ्ते का उनका एक टारगेट होता है एक क्वालिटी का, कि इस हफ्ते इस क्वालिटी को प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट वीक सेकेंड क्वालिटी को, इस प्रकार से 13 क्वालिटीज उन्होंने रखी हैं। और हर साल में ये 4 बार रोटेट होके एक ही क्वालिटी 4 बार आती है। तो किस प्रकार से हम भी अपने लाइफ में कोई ना कोई क्वालिटी रख सकते हैं, कुछ क्वालिटीज लिख सकते हैं, जिन क्वालिटीज को अपनाने से हम लोग, जैसे बताया गया त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तने सदा हरि। तो ये सारी क्वालिटीज हैं, और इन क्वालिटीज को जब अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उन क्वालिटीज को अपनाने से हम लोग कीर्तनीय सदा हरी, हमेशा भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। तो क्वालिटीज अपनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डिवोटेड सर्विस, ये भक्तों की सेवा था, डिवोटेड सर्विंग डिवोटेड था, डिवोशनल सर्विस भी ठीक है, डिवोशनल सर्विस का पार्ट है, कोई बात नहीं, सर्विंग डिवोटेड था। और सबसे पहले कि हम लोग भक्तों की सेवा करें, अगर हम किसी क्वालिटी को अपनाना चाहते हैं तो भक्तों की सेवा करें, और भक्तों की सेवा करने मात्र से वो क्वालिटीज हमारे अंदर आएंगी। सेकंड इज बाय एसोसिएशन, भक्तों का संग करें, हम लोग मंदिर में आए, भक्तों का संग करें, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ें, और प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ने के साथ साथ हम लोग प्रभुपाद जी का संग कर सकते हैं। तीसरा है शास्त्र, शास्त्रों को पढ़ें हम लोग। चौथा है गुरु, तो जो गुरु और शास्त्र हैं उनसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से इन क्वालिटीज को हम अपने जीवन में उतारें। और फिफ्थ है प्रैक्टिस, जो भी हम लोग क्वालिटी कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। सिक्स्थ है फाइंडिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग कृष्ण लीला और गौर लीला। तो मान लीजिए अगर हम लोग, हमने अपनी क्वालिटी रखी है ह्यूमिलिटी, तो उस ह्यूमिलिटी को, उस क्वालिटी को हम लोग ढूंढ सकते हैं कि कृष्ण लीला में ये कहां कहां आई, मतलब किस पास्ट टाइम में, किस स्टोरी में कृष्ण लीला आई और किस प्रकार से हम भक्तों ने किया, और गौर लीला में भी किस प्रकार से, जैसे कोई भक्त हम्बल थे या किस प्रकार उन्होंने किया। तो ये सब क्वालिटीज हम लोग रख सकते हैं, कृष्ण लीला से हम लोग ढूंढ सकते हैं, फाइंडिंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग कृष्ण लीला। और सेवन्थ है कलेक्टिंग जेम्स, कलेक्टिंग जेम्स का मतलब कोई हीरे इकट्ठे करना नहीं है, अगर हमने कुछ क्वालिटीज रखी है तो हम हीरों को ढूंढें, और असली हीरे हैं भक्त, तो हम उन भक्तों को ढूंढें जिन भक्त के अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो ऐसा करने मात्र से क्या होगा, जो हमारे अंदर की नेगेटिव देखने की टेंडेंसी वो खत्म हो जाएगी। अगर हमने एक वीक टॉलरेंस रखा तो हम ऐसे भक्तों को ढूंढेंगे जो विनम्र हो, ऐसी लीलाओं को देखेंगे भगवान की पास्ट टाइम्स में जो दिखाती हूँ कि किस प्रकार विनम्रता को जीवन में अपनाया जा सकता है। 8 डिटर्मिनेशन, दृढ़ता बनाए रखे अपनी, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाया चलो बड़ा मुश्किल है होगा नहीं, धैर्य बनाए रखे, डिटर्मिनेशन बनाए रखे। 9 है रेगुलर सेल्फ एनालिसिस, नियमित रूप से सेल्फ एनालिसिस करें, देखें कि मैं आगे बढ़ रहा हूं नहीं बढ़ रहा। 10th है टेक फीडबैक, हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, जो भी हमारे मेंटर्स हैं जिनसे भी हम गाइडेंस लेते हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि मैं ये क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या मैं कर पा रहा हूं, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हूं, और अगर सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं तो कैसे मैं और आगे बढ़ सकता हूं इसमें, तो ये फीडबैक हम ले सकते हैं। 11th है प्रे, प्रार्थना कर सकते हैं हम भगवान से, जब हम भगवान के पास आए तो कुछ प्रार्थना करने के लिए नहीं होता हमारे पास कि हम क्या प्रार्थना करें भगवान से, पर अगर हमने कोई क्वालिटी रखी होगी तो हम भगवान के पास आके ये प्रार्थना कर पाएंगे कि मुझे विनम्र बनाओ ताकि मैं हरिनाम ले सकूं, मैं सहनशील बन सकूं, सिंपल बन सकूं, मैं दृढ़ता हो, पेशेंस हो, ये भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। 12th है रेगुलर साधना, रेगुलर साधना भी और स्ट्रिक्ट साधना भी, जो भी हमारी साधना है बहुत रेगुलर हो और बहुत स्ट्रिक्ट हो, नियमित रूप से हो। अगर हम ढीले हैं अपनी साधना में तो नहीं कर पाएंगे, तो साधना बहुत पक्की हो हमारी। 13th है रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट भेज सक बना सकते हैं इसकी, कि जो भी हमारे मेंटर्स हैं या उनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैं ये सक्सेसफुल हूँ इतना और इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं हम इसमें। 14th है काउंटिंग, काउंटिंग का मतलब हम एक डायरी मेकिंग कर सकते हैं इसके लिए, एक स्पेसिफिकली डायरी इसलिए रख सकते हैं जिसमें हम लोग यही लिखेंगे कि हाउ टू डेवलप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज, इन ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को मैं अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ, कुछ 15-20-30 क्वालिटीज लिख सकते हैं, और फिर वीकली बेसिस पे हम उन क्वालिटीज को लिख कर ये देख सकते हैं कि कितने नियमित रूप से मैं इसका पालन कर पा रहा हूँ, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ कितना नहीं सक्सेसफुल हूँ, उसको हम देख सकते हैं। और 15th आस्क ब्लेसिंग्स, हम भक्तों के पास जाते हैं, भक्तों से बोलते हैं प्रभु जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, अब हम भक्तों के पास जाएंगे तो अब हम भक्तों से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी मुझ पर ये कृपा कीजिए कि ताकि मैं इस क्वालिटी को अपने जीवन में उतार सकूं। तो ये ब्लेसिंग्स, ये आशीर्वाद, ये आशीर्वाद सब भक्तों से मांग सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके मुझे ऐसे लगे कि जिनके द्वारा हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को अपने जीवन में उतार सकते हैं, और ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उतारना ये लॉन्ग रन है, ये कोई शॉर्ट रन नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि कुछ दिनों में हो गया सक्सेसफुल तो ऐसा संभव नहीं होगा, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अच्छे वर्णाश्रम को एस्टैब्लिश करने के लिए, अच्छे वर्णाश्रम धर्म को बनाने के लिए ब्राह्मण बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और ब्राह्मण स्ट्रांग तभी होंगे जब उनके अंदर ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आएंगे, ये ब्राह्मणों के गुण आएंगे। और मान लीजिए अगर ब्राह्मणों में ब्राह्मणों के गुण भी हैं, मान लीजिए ब्राह्मणों में ब्राह्मण के गुण भी हैं, और अगर अपने आश्रम हर वर्ण का हर व्यक्ति अच्छी तरीके से पालन कर भी रहा है, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, यहाँ पर 11वें स्कंद में बताया गया है, ये चमस योगेंद्र बता रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम द माउथ ऑफ ब्रह्मा द ब्राह्मणिकल ऑर्डर हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस, कि ब्रह्मा जी के मुख से जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है वह निकला। सिमिलरली फ्रॉम मिस आर्म्स, ब्रह्मा जी की बाहों से क्या निकले, क्षत्रियास हैव कम, फ्रॉम हिज वेस्ट वैश्य हैव कम, उनके वेस्ट से वैश्य निकले, एंड फ्रॉम हिज लेग्स शूद्रास हैव कम, उनके पैरों से शूद्र निकले। दीज फोर ऑर्डर्स एंड देयर स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट्स कंबाइंड टू मेक सोसाइटी कंप्लीट, तो ये वर्ण और आश्रम ये सारे मिलकर एक कंप्लीट सोसाइटी बनाते हैं। और अगले श्लोक में बता रहे हैं यवेशम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम ना भजन्ति अवजानन्ति स्थानात भ्रष्टः पतन्ति अधः। इफ वन सिंपली मेंटेन्स एन ऑफिशियल पोजीशन इन वर्णाश्रम, अगर कोई सिंपली एक वर्णाश्रम में अच्छी ऑफिशियल पोजीशन बना के रखे, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम अच्छी तरीके से करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम अच्छी तरीके से करे, वैश्य वैश्य का काम अच्छी तरीके से करे, शूद्र शूद्र का काम अच्छे तरीके से करे, अगर ये सब भी हो बट डज नॉट वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु, पर अगर वो विष्णु का भजन नहीं करते, ही फॉल्स डाउन फ्रॉम हिज पफ द पोजिशन इनटू अ हेलिश कंडीशन, तो क्या होगा? पतंती अधा, वह अपनी पोजीशन से, अब जिस स्थान पर वो है वहां से गिर जाएगा और नरकगामी बनेगा। और चैतन्य चरितामृत में भी सेम चीज बताई गई है, चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। द फॉलोवर्स ऑफ द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ द फोर सोशल ऑर्डर्स। तो जो वर्णाश्रम सिस्टम को जो फॉलोवर्स हैं, अगर वो अपने चारों आश्रमों का, वर्णों का अच्छी तरीके से सख्ती से पालन करें, इफ वन कैरियस आउट द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ऑर्डर्स, अगर अच्छी तरीके से इसका पालन करें, बट डज नॉट रेंडर सर्विस टू कृष्णा, परंतु भगवान कृष्ण की सेवा ना करें, तो बता रहे हैं ही फॉल्स इनटू अ हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ, रौरव पड़ी मजे, तो क्या है, नर्क का गामी बन जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भगवान का भजन नहीं कर रहा। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में यही बताया है, यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि कोई भी कार्य अगर यज्ञ के रूप में नहीं किए जा रहे तो क्या बन जाते हैं, केवल कर्म बंधन बनते हैं हमारे लिए, उनसे हमारे को कुछ मिलता नहीं है, केवल कर्म बंधन। चाहे बाह्य रूप से हम लोग पुण्य कार्य कर रहे हों, पाप कार्य कर रहे हों, पर वो कर्म बंधन बनते हैं हमारे लिए ना? तो ये प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से आजकल पेड़ों को काटा जा रहा है, पर पेड़ों को प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप काटो, पर किस लिए काटो, केवल एस्कॉन के लिटरेचर छापने के लिए, क्योंकि वो जो लिटरेचर्स हैं, वो जो शास्त्र हैं, हमें भगवान से मिला रहे हैं। तो अगर उन शास्त्रों को छापने के लिए, पेपर बनाने के लिए अगर आप पेड़ों को काट रहे हो, तो वो पाप नहीं है, वो आपको बंधन में ही डालेगा, नहीं तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी से भी पूछा गया था, एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी एक्चुअली टेक्नोलॉजी का हमेशा खंडन करते थे, तो प्रभुपाद जी से रिपोर्टर ने ये पूछा कि आप टेक्नोलॉजी का खंडन कर रहे हैं, पर आप भी ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, है ना, तो आपका ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना है, कि अभी आप प्लेन में आए, आपने टेक्नोलॉजी यूज की। तो प्रभुपाद ने बोला दिस टेक्नोलॉजी इज यूजलेस, ये बिल्कुल बेकार है। तो रिपोर्टर ने बोला अगर बेकार है तो आप यूज कर क्यों कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोला टू मेक इट यूजफुल, इसको यूजफुल बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये भक्त हैं टेक्नोलॉजी को, दरअसल टेक्नोलॉजी का यूज करने का अधिकार केवल भक्तों को ही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग डिमांड करें ज्यादा टेक्नोलॉजी की, जितनी लिमिटेड हमारी जरूरत है वहां पर, और वो भी जरूरत किसी वरिष्ठ भक्त से चेक करवा लें कि क्या आपकी जरूरत है या नहीं है, तो वो चेक करा के ही टेक्नोलॉजी को यूज करें। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी में यज्ञ अर्थात कर्मणो भगवद्गीता 3.9 के एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि अगर हम कोई कार्य करते हैं जो भक्ति से संबंधित नहीं है, वो हमें कर्म बंधन में डालता है, पर अगर हम कोई कार्य करते हैं जो भक्ति से संबंधित भी है, पर अगर किसी डिजायर के लिए किया जा रहा है, किसी इच्छा के लिए किया जा रहा है, मेटीरियल डिजायर के लिए, तो वो भी क्या कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है। डिजायर कैसे, ज्यादातर तीन डिजायर्स होती हैं, धन, जन और सुंदरी। इसलिए महाप्रभु ने बोला है न धनम न जनम न सुंदरी, हमारे दिमाग में जो भी डिजायर घूम रही होती है वो तीन, इन तीन के अंतर्गत होती है। कभी धन पे मन भागता है, कभी जन पे भागता है, कब यश पूजा मिल जाए, और कभी सुंदरी, बस इन तीन चीजों में भागता है मन। इन तीन चीजों के अलावा एक चौथा भी होता है, उसे कहते हैं यश। जब जिसको यश, जिसको धन का लालच होता है उसे सिर्फ धन चाहिए, जिसको सुंदरी का लालच है उसे सिर्फ सुंदरी चाहिए, जिसको फॉलोवर्स का लालच है उसे सिर्फ फॉलोवर्स चाहिए, पर जिसको यश का लालच है उसे तीनों चाहिए। तो अगर किसकी इस प्रकार की डिजायर है तो वो भी क्या है, कर्म बंधन का कारण बन जाता है। चाहे वो बाह्य रूप से देखने में लग रहा है सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, पर पीछे उसकी डिजायर थी, मोटिव थी, कुछ मोटिव था, बहुत एक इच्छा थी, तो वो कर्म बंधन का कारण बन गया। तो हमारी केवल एकमात्र इच्छा होनी चाहिए, और आखिरी दो मिनट में इसको खत्म कर देते हैं, ये भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, ना पारमेष्ठयम ना महिंद्र धिष्णयम ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर अपनूर्भवम वा मई अर्पितात्मेच्छति मद विनायत उद्धवा दोस हु आर कंप्लीटली सरेंडर अनटू मी माय डिवोटीज प्योर डिवोटीज दे हैव नो डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। भगवान कह रहे हैं उद्धव जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे शरणागत हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, नॉट डिजायर फॉर लिबरेशन, ना उनकी मुक्ति की इच्छा होती है, दे ओनली वॉन्ट टू सर्व माय लोटस फीट एंड गिव मी प्लेजर। उनकी केवल एकमात्र इच्छा होती है मेरे चरण कमलों की सेवा करना और मुझे आनंद देना। दे डू नॉट वॉन्ट द पोजिशन ऑफ ब्रह्मा, वो ब्रह्मा नहीं बनना चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट द पोजिशन ऑफ इंद्रा, वे इंद्र नहीं बनना चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट टू बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, वो इस पूरे वर्ल्ड का संसार का राजा नहीं बनना चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट टू ऑक्यूपाई द हेवनली प्लैनेट्स वेयर बलि महाराज बलि वेंट नॉर ऑपुलेंस, तो वो किसी भी प्रकार का कोई हेवनली प्लैनेट्स कोई स्वर्ग वगैरह नहीं चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट दिस योग सिद्धि मिस्टिक परफेक्शन, वो किसी प्रकार की योग सिद्धि कोई मिस्टिक परफेक्शन नहीं चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट लिबरेशन वे मुक्ति नहीं चाहते, दे डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग वे कुछ नहीं चाहते, तो क्या चाहते हैं वो, दे ओनली वॉन्ट टू सर्व मी एंड गिव मी प्लेजर, उनकी केवल एकमात्र इच्छा है कि मेरी सेवा करना और मुझे आनंद देना, यही केवल भक्त की एकमात्र इच्छा है। और मुकुंदमाला स्तोत्र में भी यही बताया गया है, ओ लॉर्ड आई डू नॉट वॉन्ट मेटीरियल एंजॉयमेंट, मुझे कोई भौतिक इच्छा नहीं आनंद नहीं चाहिए, आई डू नॉट प्रे टू यू फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम नर्क, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मुझे नर्क से मुक्ति दो, फॉर दिस पर्पस आई एम नॉट ऑफरिंग प्रेयर्स एट योर लोटस फीट, इस कारण से मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा आपकी भक्ति नहीं कर रहा कि मुझे नर्क से मुक्ति मिल जाए, आई डू नॉट वॉन्ट अ ब्यूटिफुल वूमेन दैट इज अवेलेबल इन हेवन और टू बी एम्ब्रेस्ड बाय देयर सॉफ्ट आर्म्स, मैं किसी सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं कर रहा, उससे आलिंगन की इच्छा नहीं कर रहा जो हमें स्वर्ग में भी मिल जाता है, नो आई डू नॉट वॉन्ट दैट, मुझे वो नहीं चाहिए, ओ लॉर्ड हरी आई एम नॉट ऑफरिंग प्रेयर्स एट योर लोटस फीट फॉर दैट, आई ओनली वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए, भक्ताद भक्तिर अहेतु की त्वई टू सर्व योर लोटस फीट, केवल आपके चरण कमलों की सेवा, लाइफ आफ्टर लाइफ एंड गिव यू प्लेजर, जन्म जन्मांतर तक मुझे आपके चरणों की सेवा मिलती जाए और ताकि मैं आपको आनंद दे सकूं, इन स्पाइट ऑफ ऑल सफरिंग्स, हर सफरिंग्स के बावजूद, ऑल डिफिकल्टीज, ऑल रिब्यूक्स, ऑल इंसल्ट्स, ऑल मिजरीज, वॉट एवर मे कम, आई हैव टू टॉलरेट इट एंड सर्व योर लोटस फीट, तो किसी भी प्रकार का समस्या आए, मेरी बेइज्जती की जाए, मुझ पे दुख आए, कुछ भी क्यों ना आए, मैं उसे सहन करूंगा और हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूंगा। तो दरअसल एक भक्त की यही इच्छा होती है। तो हमें ये देखना है कि समाज की स्थिति आजकल यही है कि किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का पालन नहीं हो रहा, हर वर्ण हर आश्रम अपने मन मर्जी से चल रहे हैं और हमें चाहिए कि इन वर्ण आश्रम को हम लोग पालन करें, पर इतना इन वर्ण आश्रम में ना हम फंस जाएं कि इन वर्ण आश्रम का पालन करने के कारण हम लोग जो हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है भक्ताद भक्तिर अहेतु की त्वई, उसे ना भूल जाएं हम लोग। और जो भी हमारे अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण क्वालिटीज हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जिसलिए मूवमेंट बना है सबको ब्राह्मण बनाने के लिए, उन क्वालिटीज को हम लोग डेवलप करें। और क्योंकि अगर अच्छे वैष्णव ही समाज को लीड करेंगे तो ये समाज अच्छा चल सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नेताय गौर प्रेमानंदे।